शांति, ओम शांति। सत गुरुवार की गुड मॉर्निंग। आज सतगुरु बाबा ने क्या कहा होगा? बाप टीचर सतगुरु बाबा है हमारे, या रिसेंटली कई मुरलियों में बाबा कहते हैं, मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, सतगुरु भी हूँ। पहले बाबा कहते थे किसी भी रूप में याद करो, चाहे बाप रूप में, चाहे टीचर, चाहे सतगुरु। फिर बाबा ने कहा नहीं, तीनों रूप में एक साथ याद करो, तीनों ही याद आने चाहिए। और आज बाबा ने कहा कि मैं बाप जरूर हूँ तुम्हारा, लेकिन मैं तुमको बाप नहीं बना सकता हूँ, तुम सब मेरे बच्चे हो। हम तो बाबा के बाप नहीं बन जाएंगे ना। कई बार बाबा कहते मैं बच्चा बन जाता हूँ, लेकिन बाबा कहे मैं तो सदा बाप ही हूँ सबका। हाँ, टीचर हूँ तो मैं तुमको टीचर जरूर बनाता हूँ। टीचर बनाते हैं बाबा हमको, बच्चों को। और क्या कहते हैं, जैसे मैं पढ़ाता हूँ तुम्हें, तुमको औरों को पढ़ाना है और उनको भी टीचर बनाना है। इसलिए ये यूनिवर्सिटी है ना, जहाँ पढ़ करके फिर टीचर बनते हैं। कितनी हमारी बहनें देखो टीचर कहलाती है ना, भाई भी टीचर है। परंतु सतगुरु मैं नहीं बनाता हूँ, सतगुरु बनना ये तो मेरा ही कर्तव्य है। कई बार बाबा ये भी कहते हैं, ब्रह्मा गुरु भी के मानते हैं, तो तुम गुरु भाई बन जाते हो। लेकिन सतगुरु तो एक ही है, जो सत्य ज्ञान देते हैं और मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। तो ज्ञान से मिलती है जीवन मुक्ति और योग से मिलती है मुक्ति। मनमना भव है मुक्ति के लिए और मध्याजी भव है जीवन मुक्ति के लिए। तो बाबा कहते हैं दोनों को आंखों में रखो, एक में मुक्ति, एक में जीवन मुक्ति। तो सदा अगर यही स्मृति में रहे तो बुद्धि और कहीं नहीं जाएगी। सदा बाप टीचर सतगुरु याद रहे तो और कोई भी याद नहीं आएगा। आज की सारी मुरली इसी पर है। सुनते बाबा के माँ वाक्य। आज 21/11/2024 है। मीठे बच्चे, तुम्हें अब टीचर बन सबको मन वशीकरण मंत्र सुनाना है। कौन सा है मन वशीकरण मंत्र? मन मना भव ना। तो बाबा कहते हैं तो तुम्हें अब टीचर बन सबको मन वशीकरण मंत्र सुनाना है। ये तुम सब बच्चों की ड्यूटी है। भगवान ने ये ड्यूटी दी हमें कि तुमको सबको यह मंत्र देना है कि शिव बाबा को याद करो। बाबा कई बार कहते हैं ना, मैं कह सकता हूँ मन मना भव, तुम नहीं कह सकते हो मन मना भव। मन मना भव माना मन को मेरे में रखो। तो मन को मेरे में रखो ये भगवान कहते हैं, हम आत्माएं थोड़ी कहती हैं। हमारे मन हमारे में थोड़ी मन रखो। परंतु ये जरूर कहो, शिव बाबा कहते हैं मन मना भव, मन को मेरे में रखो। तो ये वशीकरण मंत्र मन को वश करने का है, केवल जपने का नहीं है। तो तुम्हें अब टीचर बन सबको मन वशीकरण मंत्र सुनाना है। ये तुम सब बच्चों की ड्यूटी है। सब ड्यूटी ये निभाते हैं ना, भगवान का परिचय सबको देना, ये हम ब्राह्मणों की ड्यूटी है। प्रश्न है, बाबा किन बच्चों का कुछ भी स्वीकार नहीं करते हैं? किन बच्चों का कुछ भी स्वीकार नहीं करते हैं? इसमें बहुत बड़ा राज है। बाबा कई बार कहते हैं, मैं चाहूं तो किसी को साहूकार बनाऊं, चाहूं तो किसी को गरीब बनाऊं, जो यहाँ धन से सेवा करते हैं अपना भाग्य बनाते हैं, लेकिन जो बहुत धनवान लोग हैं वो कहेंगे बाबा को, बाबा आपको जब जरूरत हो ना तब आप हमें बताना, तो हम आपको मदद करेंगे। अब भगवान दाता है, वो आपको क्यों कहेगा अभी मदद चाहिए तुम्हारी, तुम मदद करो। बाबा तो दाता है, और बाबा को तो कुछ अपने लिए चाहिए ही नहीं, जो करते सब बच्चे करते अपने लिए करते हैं, मकान भी बच्चे बनाते अपने लिए, बाबा को तो नहीं चाहिए। लेकिन बाबा किन बच्चों का कुछ भी स्वीकार नहीं करते? उत्तर, जिन्हें अहंकार है कि मैं इतना देता हूं, मैं देता हूं, मैं इतना देता हूं इसलिए यज्ञ चल रहा है। अब बताओ कितना बड़ा अभिमान, बाबा के तो कितने बच्चे हैं। जिन्हें अहंकार है कि मैं इतना देता हूं, मैं इतनी मदद कर सकता हूं, बाबा उनका कुछ भी स्वीकार नहीं करते। वो फराग दिल होकर के बाबा को देते नहीं, हाँ बाबा आपको जब चाहिए ना आप मांग लेना। अब बाबा क्यों मांगेगा, हाँ बाबा थोड़ी भिखारी है जो मांगेगा, वो तो दाता है। इसीलिए बाबा कहे तो बाबा अंत में आएंगे, सब कहेंगे हमारा लो, सब खत्म होना है तो लो, बाबा लेगा ही नहीं। तो वो जो अमीर है वो गरीब हो जाएंगे भविष्य में, और जो गरीब है एक एक पाई देते हैं, एक एक बूंद देते हैं, उस बूंद से सागर बन जाता है, वो फिर बाबा कहते साहूकार बन जाते हैं। तो जिन्हें अहंकार है मैं इतना देता हूं, मैं इतनी मदद कर सकता हूं, बाबा उनका कुछ भी स्वीकार नहीं करते। बाबा कहते हैं ये मेरे हाथ में चाबी है। कौन सी चाबी? साक्षात्कार कराने की चाबी तो है, लेकिन ये दूसरी चाबी है, मेरे हाथ में चाबी है। चाहे तो मैं किसी को गरीब बनाऊं, चाहे तो किसी को साहूकार बनाऊं। अगर बाबा धन स्वीकार करते तो साहूकार तो बनेगा ही ना, और नहीं स्वीकार करते तो साहूकार थोड़ी बनेगा, गरीब बनेगा। तो चाहे किसी को गरीब बनाऊं, चाहे किसको साहूकार बनाऊं, ये भी ड्रामा में राज है। जिन्हें आज अपनी साहूकारी का घमंड है वो कल गरीब बन जाते हैं, और गरीब बच्चे बाप के कार्य में अपनी पाई पाई सफल कर साहूकार बन जाते हैं, पाई पाई सफल करते हैं। हाँ, बहुत बड़ा भाग्य बन जाता है उनका, पाई पाई सफल करते हैं। कई कहते हैं ना, भगवान को अगर इतना बड़ा कार्य कराना था इस सृष्टि के परिवर्तन का, तो कोई ऐसे अरबपति खरबपति व्यक्ति के तन में प्रवेश करता और उसके द्वारा कराता, उसका सारा धन लग जाता, तो फिर तो और किसी के धन की जरूरत ही नहीं होती। लेकिन बाबा कहते नहीं, मैं तो साधारण तन में आता हूँ और गरीबों की पाई पाई सफल करता हूँ। वो एक ही सब कुछ कर ले तो बाकी का सफल कैसे होगा? तो बाबा कहते हैं वो कल गरीब बन जाएंगे जो अभी अपना मगरूरी दिखाते हैं, और गरीब बच्चे बाप के कार्य में अपनी पाई पाई सफल कर साहूकार बन जाते है ना। कई बार बाबा ने मुरली में कहा, ऐसी माताएं आती थी, गरीब माताएं, गांव की माताएं, तो पोटली में थोड़े चावल, थोड़ा गेहूं मना आटा या जो कुछ भी शक्कर आदि, ये सब पोटली पोटली बना करके ले आती थी बाबा के सामने, हाँ बाबा ये यज्ञ में सफल करना। अभी भी कई लाते ऐसे, तो बाबा उनके उनका जो भी को देते थे बाबा आंखों पर रखते थे, बच्चे तुम यहाँ बाप के मददगार बनते हो, बाबा तुमको महल देगा, एक ईंट बाबा मेरी लगा देना। मनी ऑर्डर भेजते थे, एक ईंट कितने भेजते होंगे, चलो 5 रुपया 10 रुपया कुछ भेजते होंगे, और मनी ऑर्डर का कितना पैसा लगता भी होगा, लेकिन मेरी एक ईंट लगा देना। तो बाबा उनको लिखते थे, बच्ची आप की ईट ये आपको महल दिलाएगी। तो देखो, किसको चाहे तो साहूकार बनाए, किसी को चाहे तो गरीब बनाए, ये चाबी है बाबा के पास। ओम शांति। ये तो रूहानी बच्चे जानते हैं कि बाप आए हैं हमको नई दुनिया का वर्षा देने, ये तो बच्चों को पक्का है ना कि जितना हम बाप को याद करेंगे उतना पवित्र बनेंगे। दोनों का आपस में संबंध है, याद करेंगे तो पवित्र बनेंगे और पवित्र बनेंगे तो याद ठहरेगी ना, दोनों का आपस में संबंध। जितना याद करेंगे बाप को उतना पवित्र बनेंगे, जितना हम अच्छा टीचर बनेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाप तुम्हें टीचर के रूप में पढ़ाना सिखाते हैं, पढ़ना तो सिखाते लेकिन पढ़ाना भी सिखाते, कैसे तुम टीचर बन के पढ़ाओ। हाँ बाबा कई बार मुरलियों में सुनाते, बच्चे ऐसे बताओ ऐसे बताओ ऐसे बताओ, तो ये टीचर बन के सिखाते ना कैसे पढ़ाओ। तो बाप तुम्हें टीचर के रूप में पढ़ाना सिखाते हैं, तुमको फिर औरों को सिखाना है। तुम पढ़ाने वाले टीचर जरूर बनते हो, बाकी तुम कोई का गुरु नहीं बन सकते हो, सतगुरु भी नहीं बन सकते हो, सिर्फ टीचर बन सकते हो। गुरु तो एक सतगुरु ही है, वो ही सिखलाते हैं। सर्व का सतगुरु एक ही है, वो टीचर बनाते हैं। तुम सबको टीच करके, हाँ पढ़ा करके रास्ता बताते रहते हो, तुम सबको टीच करके रास्ता बताते रहते हो मन मना भव का। बाप ने तुम्हारे पर ये ड्यूटी रखी है कि मुझे याद करो और फिर टीचर भी बनो। तुम कोई को बाप का परिचय देते हो तो उनका भी फर्ज है बाप को याद करना। टीचर रूप में सृष्टि चक्र की नॉलेज देनी पड़ती है, बाप को जरूर याद करना पड़े। बाप की याद से ही पाप मिट जाते हैं। बच्चे जानते हैं हम पाप आत्मा हैं, इसलिए बाप सबको कहते हैं, हाँ पाप आत्मा ही हम सब बन गए, तो बाप क्या कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप मिट जाएंगे। बाप ही पतित पावन है तो युक्ति बताते, पावन होने की युक्ति क्या बताते हैं, मीठे बच्चे तुम्हारी आत्मा पतित बनी है जिस कारण शरीर भी पतित बना है। पहले तुम पवित्र थे, अभी तुम अपवित्र बने हो। तो पवित्र बनना है तो मुझे याद करो। तो पहले तुम पवित्र थे, अभी तुम अपवित्र बने हो। अब पतित से पावन होने की युक्ति तो बहुत सहज समझाते हैं। कैसे होंगे पतित से पावन, क्या युक्ति बाबा बताते, बस मुझे याद करो और कोई युक्ति नहीं। अब पतित से पावन होने की युक्ति तो बहुत सहज बताते हैं, बाप को याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे। उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो। वो लोग तो गंगा स्नान करते हैं तो गंगा को याद करते हैं, हर गंगे यहाँ कहते हैं ना, ये गंगे तू मेरे पाप हर ले, हर गंगे विश्वनाथ गंगे, हाँ गंगा ऐसे कहते रहते हैं। तो गंगा को याद करने से पावन बन जाना है, परंतु बाप कहते हैं कोई भी पावन बन नहीं सकते, केवल गंगा स्नान से सब दुख दूर हो जाए, पाप दूर हो जाए, पावन बन जाए, बाबा कहते ये नहीं होता है। परंतु बाप कहते कोई भी पावन बन नहीं सकते, पानी से कैसे पावन बनेंगे। बाप कहते हैं मैं पतित पावन हूँ। तो हे बच्चों, पतित पावन बाप क्या कहते हैं, हे बच्चों देह सहित देह के सब धर्म छोड़ मुझे याद करने से तुम पावन बन फिर से अपने घर मुक्ति धाम पहुंच जाएंगे। कैसे बनेंगे पावन, देश है देह के सब धर्मों को भूल मुझे याद कर पावन बन फिर तुम अपने घर मुक्ति धाम पहुंच जाएंगे। सारा कल्प तो तुम घर को भूले हो, है ना, याद थोड़ी था घर जाना, ऊपर जाना, ऊपर कहाँ पता ही नहीं। तो बाबा कहते सारा कल्प घर को भूले हो, बाप को सारा कल्प कोई जानता ही नहीं है। शिव बाबा को भी भूले तो घर को भी भूले, सारा कल्प बाप को सारा कल्प कोई जानता ही नहीं है, एक ही बार बाप खुद आकर अपना परिचय देते हैं इस मुख द्वारा। इस मुख की कितनी महिमाएं, क्या है इस मुख की महिमा जिस द्वारा बाप ज्ञान देते हैं? गौ मुख। तो गौ मुख कहते हैं ना, वो गौ तो जानवर है तो ये मनुष्य की बात, गाय के मुख से थोड़ी ज्ञान देंगे बाबा। हाँ, तो उस गौ मुख का थोड़ी गायन है गाय का, पर बाबा कहते हैं ये ब्रह्मा माँ बनती है, गाय माता है ना, तो इस मुख से बाबा ज्ञान देते हैं। वो गौ तो जानवर है, ये तो मनुष्य की बात है। तुम जानते हो ये बड़ी माता है। कौन बड़ी माता है? ब्रह्मा बाबा। और कोई कौन छोटी माता है? हाँ, ममा। तो छोटी माता, बड़ी माता, तो ये बड़ी माता है जिस माता द्वारा शिव बाबा तुम सबको एडॉप्ट करते हैं। तुम अभी बाबा बाबा कहने लगे हो, पहले थोड़ी कहते थे, शिव बाबा का बनने से पहले थोड़ी कहते थे बाबा बाबा, अभी बाबा बाबा कहने लगे हो क्योंकि तुम बाबा के बने हो। तुम अभी बाबा बाबा कहने लगे हो, बाप भी कहते हैं इस याद की यात्रा से ही तुम्हारे पाप कटने हैं। बच्चों को बाप याद पड़ जाता है ना, हाँ, स्वाभाविक रूप से याद पड़ना चाहिए बच्चों को, उसकी शक्ल आदि दिल में बैठ जाती है। तुम बच्चे जानते हो जैसे हम आत्मा हैं वैसे वो आत्मा परम आत्मा है। शक्ल में और कोई फर्क नहीं है, शक्ल कैसी है शिव बाबा की? ज्योति बिंदु। और हम आत्माओं की शक्ल भी ज्योति बिंदु है, तो शक्ल में कोई फर्क नहीं है। शरीर के संबंध में तो फीचर्स आदि अलग हैं, बाकी आत्मा तो एक जैसी ही है। जैसे हमारी आत्मा वैसे बाबा कहते हैं परम आत्मा भी एक आत्मा ही है। तुम बच्चे जानते हो बाप परम धाम में रहते हैं, हम भी परम धाम में रहते हैं। हाँ, तीन समानताएं हैं ना, आत्मा और परमात्मा में तीन समानताएं हैं, एक जैसा रूप है, एक जैसा घर है, हाँ एक ही घर है, और एक जैसे गुण भी है। क्वालिटी में अंतर नहीं है, हाँ क्वांटिटी में अंतर जरूर है, वो सागर है, आत्मा स्वरूप है, लेकिन इन तीनों में समानता है आत्मा और परमात्मा में। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो बाप परम धाम में रहते हैं, हम भी परम धाम में रहते हैं। बाप की आत्मा और हमारी आत्मा में और कोई फर्क है नहीं, गुणों में भी फर्क नहीं है, वही गुण है। अंश रूप में जो शिव बाबा के गुण है वो आत्मा में भी गुण है, इसीलिए कोई फर्क नहीं है। वो भी बिंदी है, हम भी बिंदी है, ये ज्ञान और कोई को है नहीं, तुमको ही बाप ने बताया है। बाप के लिए भी क्या क्या कह देते हैं, कितनी ग्लानी कर दी है बाप की है। तो बाबा कहते इतनी जो ग्लानी की है ना, इसलिए तुम्हारे सिर पर इतने पाप चढ़े। अभी कोई निर्दोष व्यक्ति की ग्लानी करता जाए और वो बिल्कुल निर्दोष है तो कितना बड़ा पाप चढ़ता है, वो निर्दोष की इतनी ग्लानी कर रहे हैं जैसे कि उसने पाप किया है। तो बाबा कहते इसीलिए पाप चढ़ गया, भगवान कितना ऊंचा है और सर्वव्यापी कह करके ग्लानी की। तो देखो बाबा कहते हैं, हाँ तो क्या क्या कह देते हैं ग्लानी करके शब्द, सर्वव्यापी है, पत्थर ठिकर में है, जिसको जो आता है वो कह देते हैं भगवान के बारे में। मुंडी मुंडी मते बिना, हर एक का जो दिमाग उस अनुसार वो कह देता है भगवान के बारे में। तो बाबा कहते हैं जिसको जो आता है वो कह देते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार भक्ति मार्ग में बाप के नाम रूप देश काल को भूल जाते हैं, तुम भी भूल जाते हो, हम भी तो भूले हुए थे ना। आत्मा अपने बाप को भूल जाती है, बच्चा बाप को भूल जाता है तो बाकी क्या जानेंगे, अपने पिता को ही भूल गया, अपने आप को भूल गया, तो बाबा कहते वो तो क्या जानेंगे फिर। तुम अच्छी रीति जानते हो, हाँ तो बाबा कहते हैं बच्चा बाप को भूल जाता है तो बाकी क्या जानेंगे, गोया निधन के हो गए। बाप को नहीं जाना मना निधन के हो गए। धनी को याद ही नहीं करते हैं, धनी के पाठ कोई नहीं जानते हैं, अपने को भी भूल जाते हैं। तो तुम अच्छी रीति जानते हो, बरोबर हम भूल गए थे, भूल गए थे ना, अभी जाना है, पहले तो भूले हुए थे, हम भूल गए थे, हम पहले ऐसे देवी देवता थे, ये भी भूल गए थे, अब जानवर से भी बदतर हो गए हैं। तो मुख्य तो हम अपनी आत्मा को भी भूले हुए हैं, अब रियलाइज कौन करावे। तुम अपने को भूले हुए हो, बाप को भूले हुए हो, घर को भूले हुए हो, ये रियलाइज कौन करावे। जिसको ये तीनों का ज्ञान हो, अब है ही नहीं ज्ञान, तो वो थोड़ी रियलाइज करा सकेगा। तो बाबा कहते हैं अब रियलाइज कौन करावे। कोई भी जीव आत्मा को ये पता नहीं होगा कि हम आत्मा क्या है, कैसे सारा पाठ बजाते हैं, हम सब भाई भाई हैं, ये ज्ञान और कोई में नहीं है। भले कहते हैं हम सब भाई भाई, लेकिन आत्मा के नाते से भाई भाई है, बाबा कहते हैं ये कोई नहीं जानते। इस समय सारी सृष्टि ही तमो प्रधान बन चुकी है, ज्ञान नहीं है। तुम्हारे में अब ज्ञान है, बुद्धि में आया हम आत्मा इस समय, हम आत्मा इतना समय अपने बाप की ग्लानी करते आए हैं। ग्लानी करने से बाप से दूर होते जाते। अब किसकी बैठ के खाली ग्लानी करते रहो, ग्लानी करते रहो, तो उस व्यक्ति के नजदीक भी नहीं जाएंगे और उसको नजदीक बुलाएंगे भी नहीं। अब ग्लानी कर रहा छोड़ो। हाँ, तो बाबा कहते मेरी ग्लानी करते आए तो तुम भगवान से दूर होते गए। ग्लानी करने से बाप से दूर होते जाते हैं, सीढ़ी नीचे उतरते गए हैं ड्रामा प्लान अनुसार। क्यों बाबा ड्रामा प्लान अनुसार कहते हैं, क्योंकि दोष किसका भी नहीं है, ये ड्रामा बना हुआ है, नीचे उतरना ही है, इसलिए ग्लानी करनी ही है, भगवान को भूलना ही है। तो बाबा कहते हैं सीढ़ी उतरते गए हैं ड्रामा प्लान अनुसार। तो मूल बात हो जाती है, कौन सी है मूल बात, बाप को याद करने की। बाप और कोई तकलीफ तो देते नहीं है, बच्चों को सिर्फ बाप को याद करने की तकलीफ है, यही तकलीफ लगती है ना, क्योंकि देह अभिमान में है तो भूल जाते हैं। तो बाप को सिर्फ, बच्चों को सिर्फ बाप को याद करने की तकलीफ है। बाप कभी बच्चों को कोई तकलीफ दे सकते हैं क्या? हाँ, क्यों, कैसे तकलीफ देंगे बच्चों को बाप। लॉ नहीं कहता कि कोई बाप अपने बच्चों को जानबूझ के तकलीफ देवे, कष्ट देवे, दुखी करे। हाँ, लॉ नहीं कहता। बाप कहते हैं मैं कोई भी तकलीफ नहीं देता हूँ, कुछ भी प्रश्न आदि पूछते हैं तो मैं क्या कहता हूँ, अब ऊटपटांग प्रश्न पूछेंगे, फालतू प्रश्न पूछेंगे, पता नहीं क्या क्या पूछते रहते हैं और ही सूत मुझाते रहते हैं। तो बाबा से अगर कोई ऐसे प्रश्न पूछते हैं तो बाबा क्या कहते हैं, कहता हूँ इन बातों में टाइम वेस्ट क्यों करते हो। हाँ, बाबा के पास क्यों आए हो, मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए, तो और बातों में क्यों टाइम वेस्ट करते हो। बाप को याद करो, मैं आया ही हूँ तुमको ले जाने, इसलिए तुम बच्चों को याद की यात्रा से पावन बनना है। सबसे मेन बात तो यही है ना, पावन बनना है, और याद की यात्रा से ही पावन बनना है, और कोई उपाय है ही नहीं, अभी एक ही उपाय है, बाकी अंत में नहीं बनेंगे तो सजा ही एक उपाय है, फिर तो याद भी नहीं रहेगी, सजा ही होगी, तो अभी तो याद है। तो बाबा कहते हैं मैं आया ही हूँ तुमको ले जाने, इसलिए तुम बच्चों को याद की यात्रा से पावन बनना है। बस मैं ही पतित पावन बाप हूँ। तो बाप युक्ति बताते हैं, कहाँ भी जाओ बाप को याद करना है। 84 के चक्र का राज भी बाप ने समझा दिया है, अब अपनी जांच करनी है। सब राज तो बाबा ने समझा दिए, तो अभी क्या जांच करनी है, कहाँ तक हम बाप को याद करते हैं, ज्ञान तो पूरा बुद्धि में आ गया, अभी कहाँ तक याद करते हैं बाप को, बाबा कहते हैं इसका पर ध्यान देना है बस, और कोई तरफ का विचार नहीं करना है, ये तो मोस्ट इजी है। बाबा की याद सबसे सहज से सहज भी है और सबसे मुश्किल से मुश्किल भी है। मुश्किल क्यों है? क्योंकि माया अपोजिशन है। और सहज क्यों है? क्योंकि बिंदी को याद करना क्या बड़ी बात है। हाँ, कोई और तो कुछ लंबा चौड़ा तो रूप नहीं बताते हैं, तो बिंदी को याद करना तो बहुत सहज है, लेकिन क्यों मुश्किल है? क्योंकि माया करने नहीं देती है। तो बाबा कहते हैं ये तो मोस्ट इजी है, बाप को याद करना है। बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो ऑटोमेटिकली माँ बाप को याद करने लग पड़ता है। बहुत छोटा बच्चा अभी बोल नहीं पाता है तो मम्मी, उसकी माँ उसको कहेगी, बोलो मम्मी मम्मा मम्मा, तो बोलना सीख जाता है। फिर पप्पा पप्पा, तो बोलना सीख जाता है। तो माँ बाप सिखाते हैं कैसे माँ बाप को याद करो। तो बाबा कहते हैं बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो ऑटोमेटिकली माँ बाप को याद करने लग पड़ता है। तुम भी समझो हम आत्मा बाप के बच्चे हैं, तो याद क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि क्यों नहीं याद पड़ता है? बाबा कारण बताते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर जो पाप चढ़े हुए हैं, वो विघ्न बनते हैं ना, माया विघ्न डालती है, वो पाप विघ्न डालते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं ये याद से ही खत्म होंगे, ये पाप याद से ही खत्म होंगे। इसलिए गायन भी है एक सेकंड में जीवन मुक्ति है, तो एक सेकंड की बात ना बाबा को याद करना, कोई बहुत परिश्रम थोड़ी बाबा देते हैं। इसलिए गायन भी है एक सेकंड में जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति का मदार पढ़ाई पर और मुक्ति का मदार याद पर। जीवन मुक्ति का मदार पढ़ाई पर, जितनी पढ़ाई पढ़ेंगे वो सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगी और उसी से धनवान बन जाएंगे। और मुक्ति का आधार याद पर, जितना याद करेंगे पावन बनेंगे तो घर सह जाएंगे, याद नहीं करेंगे तो सजाएं खा करके जाएंगे। तो मुक्ति का मदार याद पर और जीवन मुक्ति का मदार पढ़ाई पर। जितना तुम बाप को याद करेंगे और पढ़ाई पर ध्यान देंगे तो ऊंच नंबर में मर्तबा पाएंगे। धंधा आदि तो भल करते रहो, बाबा मना तो करते नहीं है। हाँ, धंधा करो, जो कुछ आपकी जिम्मेदारी है लौकिक वो भी निभानी है तो वो भले करो, बाबा मना नहीं करते। धंधा आदि जो तुम करते हो वो भी दिन रात याद रहता है ना, वो तो याद रहता है दिन रात, वो थोड़ी भूलते हो, तो बाप को क्यों भूल जाते हो? बाबा कहते हैं तो धंधा आदि जो तुम करते हो वो भी दिन रात याद रहता है ना, तो अब बाप ये रूहानी धंधा देते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो और 84 के चक्र को याद करो, ये धंधा बाबा देते हैं। फिर बाबा ने कहा ड्यूटी भी है, ये ड्यूटी भी है तो धंधा भी है। मुझे याद करने से ही तुम सतो प्रधान बनेंगे, ये भी समझते हो? क्या समझते हो? कि अभी ये पुराना चोला है, फिर सतो प्रधान नया चोला मिलेगा। अपने पास बुद्धि में तंत रखना है, तंत माना सार, ये सार रखना है अपनी बुद्धि में, जिससे बहुत फायदा होना है। जैसे स्कूल में सब्जेक्ट्स होते हैं ना, बहुत सब्जेक्ट्स होते हैं, फिर भी इंग्लिश पर मार्क अच्छी होती है, जो लैंग्वेज है लैंग्वेज की भी बहुत मार्क्स होती है और उसमें इंग्लिश तो पढ़ते ही है भारत में, तो इसीलिए इंग्लिश पर मार्क्स अच्छी होती है क्योंकि इंग्लिश है मुख्य भाषा। उनों का पहले राज्य था भारत में, तो जिन जिन देशों पर अंग्रेजों का राज्य था वहां तो सब इंग्लिश इंग्लिश में बहुत होशियार है, जिन देशों में राज्य नहीं था वहां इतने सारे इंग्लिश में होशियार नहीं है। तो अंग्रेजों ने तो सबको बहुत इंग्लिश सिखा दिया था, इतना साल राज्य किया भारत पर, क्योंकि इंग्लिश है मुख्य भाषा। उन्हों का पहले राज्य था इसीलिए वो जास्ती चलती है। अभी भी भारतवासी कर्जदार है, कर्जदार है, इतना धनवान था भारत, अभी देखो भारत सबसे लेता रहता है ना, कितना कर्जदार हो गया, रुपया डाउन होता जा रहा है, डॉलर की वैल्यू बढ़ती जा रही है, कहाँ तक नीचे पहुंचता जा रहा है रुपया। तो बाबा कहते अभी भी भारतवासी कर्जदार है, भल कोई कितने भी धनवान है, परंतु बुद्धि में ये तो है ना, हमारे राज्य के जो हेड्स हैं वो कर्जदार है, हमारी गवर्नमेंट कई देशों की कर्जदार है, बहुत कर्जा है भारत पर। हाँ, वो चुकतू करना है, लेकिन बाबा कई बार कहते कोई चुकतू नहीं करेंगे, जो भारत से लूटा है ना वो वापस कर रहे हैं। तो ये भी एक राज है भगवान ने बताया। तो कर्जदार है गाया गोया, हम भारतवासी कर्जदार है, ये भारत वाले समझते हैं। प्रजा जरूर कहेगी ना हम कर्जदार हैं, ये भी समझ चाहिए, जबकि तुम राजाई स्थापन कर रहे हो। हाँ, कहाँ तुम्हारी राजाई थी और कहाँ अभी अंत में भारत कर्जदार बन गया है, कितना सिर पर कर्जा है। तुम जानते हो हम सभी ने सब कर्जों से छूट कर, बाबा कहते हैं तुम जानते हो हम सभी इन सब कर्जों से छूट कर सॉल्वेंट बनते हैं, सारे कर्ज खत्म हो जाएंगे सतयुग में, फिर माला माल हो जाएंगे, फिर आधा कल्प हम कोई से भी कर्जा उठाने वाले नहीं है। कर्जदार पतित दुनिया के मालिक है, एक तरफ हम कर्जदार है, दूसरा फिर हम क्या कहते हैं हम यहाँ के मालिक है, और तो पतित दुनिया के मालिक है पर कर्जदार है। अभी हम कर्जदार भी हैं और पतित दुनिया के मालिक भी हैं। हमारा भारत ऐसा था, गाते तो है ना, भारत सोने की चिड़िया था, ये भी गाते हैं, और अभी भारत की हालत क्या हो गई है वो भी गाते हैं। हमारा भारत ऐसा है, गाते हैं ना, तो तुम बच्चे जानते हो हम बहुत साहूकार थे, परीजादे परीजादियां थे, ये याद रहता है हमें, हम ऐसे विश्व के मालिक थे, अभी बिल्कुल कर्जदार और पतित बन पड़े हैं। देखो कितना नीचे गिर गए, कहां विश्व का मालिक और कहां कर्जदार बन गए हैं, अभी बिल्कुल कर्जदार और पतित बन पड़े हैं। ये खेल की रिजल्ट बाप बतला रहे हैं, इस खेल में ऐसा ही है, पहले बहुत धनवान, पहले बहुत स्वर्ग के मालिक, और धीरे 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 कर्जदार बन जाते हैं और फिर नरक में आके पड़ते हैं। तो ये खेल की रिजल्ट बाप बतला रहे हैं, तो रिजल्ट क्या हुई ये तुम बच्चों की को स्मृति में आई है बात, कैसे भारत कितना ऊंचा था और कितना अभी नीचे गिरा है। सतयुग में हम कितने साहूकार थे, किसने तुमको साहूकार बनाया? बच्चे कहेंगे बाबा आपने हमको कितना साहूकार बनाया था, किसने बनाया था? तो बच्चे कहेंगे बाबा आपने हमें इतना साहूकार बनाया था। एक बाप ही साहूकार बनाने वाला है, दुनिया इन बातों को नहीं जानती, लाखों वर्ष कह देने से सब भूल गए, इतना ऊंचा भारत था ये सब क्यों भूल गए हैं, क्योंकि लाखों वर्ष पहले कह देते हैं, लाखों वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण थे। तो बाबा कहते एक बाप ही सब भूल गए हैं, क्योंकि लाखों वर्ष कह देते हैं तो कुछ भी नहीं जानते, तुम अभी सब कुछ जान गए हो। हम पद्मा पदम साहूकार थे, पद्मा पदम साहूकार थे, गायन भी है शिव बाबा आप जो देते हो वो और कोई दे नहीं सकता, कोई की ताकत नहीं जो आधा कल्प का सुख दे सके, केवल भगवान में ये ताकत है जो आधा कल्प के लिए इतना सुख देते हैं। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में भी तुमको बहुत सुख अथाह धन रहता है, इसलिए आधा आधा नहीं है, तीन हिस्सा तो आपको सुख है ही है, द्वापुर में भी सुख है। भक्ति मार्ग में भी तुमको बहुत सुख अथाह धन मिलता है। कितने हीरे जवाहरात थे जो फिर पिछाड़ी वालों के हाथ में आते हैं। अभी तो वो चीज ही देखने में नहीं आती है जो ओरिजिनल, कल भी बताया ना, आर्टिफिशियल और नेचुरल, हीरे माणिक पुखराज, ये जो ओरिजिनल थे अभी तो कुछ भी नहीं है, सब आर्टिफिशियल हो गया है, सब इमिटेशन हो गया है, पता भी नहीं चलता इमिटेशन कौन सा है और रियल कौन सा है। तो बाबा कहते अभी तो वो चीज ही देखने में नहीं आती है, तुम फर्क देखते हो ना, तुम ही पूज्य देवी देवता थे फिर तुम ही पुजारी बने हो, आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी, बाप कोई पुजारी नहीं बनते हैं। अब ये भी एक राज है ना, बाबा कभी पुजारी नहीं बनता, आत्मा सो परमात्मा कह दिया, माना आत्मा पुजारी तो परमात्मा भी पुजारी हो गया, पर बाबा कहते हैं बाप कभी पुजारी नहीं बनते हैं, परंतु क्या करते हैं, पुजारी नहीं बनते हैं, परंतु पुजारी दुनिया में तो आते हैं ना, पूज्य की दुनिया में नहीं आते हैं बाप, पुजारी की दुनिया में आते तभी तो पुजारी से पूज्य बनाएंगे, परंतु पुजारी दुनिया में तो आते हैं ना, बाप तो एवर पूज्य है, वो कभी पुजारी होते नहीं, उनका धंधा है तुमको पुजारी से पूज्य बनाना। तो बाप का धंधा क्या है, बच्चों को पुजारी से पूज्य बनना, तो ये बाप का धंधा है पुजारी से पूज्य बनाना, रावण का काम है तुमको पुजारी बनाना। ये दुनिया में किसको भी पता नहीं है कि रावण ने पुजारी बनाया फिर भगवान आकर पूज्य बनाते हैं, ये किसको पता नहीं है, तुम भी भूल जाते हो, रोज रोज बाप समझाते रहते हैं, बाप के हाथ में है, बताया जो पहले क्या हाथ में है, किसको चाहे साहूकार बनाए चाहे किसको गरीब बनाए, बाप कहते हैं जो साहूकार हैं उनको गरीब जरूर बनना है, क्यों गरीब बनेंगे, क्योंकि इस समय मगरूर है, मगरूरी है उनको, बहुत अभिमान है, मैं तो धनवान हूं, तो इसीलिए वो अभिमान उनको गिराएगा ना, किसको भी अगर अभिमान है ना जरूर एक दिन वो अभिमान उसको गिराएगा, तो इसीलिए बाबा कहते कभी अभिमान नहीं रखो। तो बाबा कहते हैं किसको चाहे साहूकार बनाए किसको गरीब बनाए भगवान के हाथ में है, तो बाप कहते हैं जो साहूकार है उनको गरीब जरूर बनना है, बनेंगे ही, लो वरदान मिल गया, बनेंगे ही गरीब, उनों का पाठ ही ऐसा है वो कभी ठहर न सके, भगवान का बन न सके, यहाँ पर रेगुलर बैठकर क्लास सुने मुरली सुने वो होगा ही नहीं, वो कभी ठहर न सके। धनवान को अहंकार भी बहुत रहता है ना, मैं फलाना हूं मैं ये हूं हम ये हमको है, हाँ ये सब में इतना धन है, घमंड तोड़ने के लिए बाबा कहते हैं, अगर किसको घमंड है तो बाबा उसका घमंड कैसे तोड़ते हैं, घमंड तोड़ने के लिए बाबा कहते हैं ये जब आएंगे आएंगे देने के लिए तो बाबा कहेंगे दरकार नहीं है, अभी तो घमंड में चूर है, लेकिन जब अंत में देखेंगे अब ये सब नष्ट हो रहा है तो आएंगे देने के लिए, तो बाबा कहते हमको चाहिए ही नहीं। शुरू में ऐसे ही हुआ, जब यज्ञ चल रहा था तो और हिंदुस्तान पाकिस्तान हो गया, तो जो हिंदू लोग थे वहां वो तो भागे, अब भागे कैसे, हाथ खाली जेब खाली, कुछ भी नहीं लेके जा सके, कुछ नहीं लेके जा सके, तो डर बहुत था कि हमको तो हाथ खाली जाना पड़ेगा नहीं तो मौत है, क्योंकि उनको कहा जाता था अगर आप हिंदू है हिंदुस्तान चले जाओ पर कुछ भी लेके नहीं जाना है, या तो मुसलमान बन जाओ या तो सिर कटवाओ, तीन ही ऑप्शन थे, चौथा कोई था ही नहीं कि यहाँ हिंदू बन के रहो और सब वो धन भी आपका हो, लेकिन ये संस्था वही की वही थी, इनको आंच भी नहीं आई, एकदम सुरक्षित थे। तो कईयों ने सोचा ये संस्था तो जाने वाली नहीं है भारत में, तो इसीलिए हम इनको धन देते हैं, ये धन ले लेवे हमारा धन, क्योंकि हम तो लेके नहीं जा सकते, तो बाबा ने मना कर दिया, घबराने का जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, तो बाबा ने उस समय कुछ भी नहीं लिया उनका, तो क्या हालत हो गई। तो देखो बाबा कहते हैं घमंड तोड़ने के लिए, बाबा कहते हैं ये जब आएंगे देने के लिए तो बाबा कहेंगे दरकार नहीं है, ये अपने पास रखो, जब जरूरत होगी तो फिर ले लेंगे, क्योंकि देखते हैं काम का नहीं है, हम ले नहीं जा सकते हैं, अपना घमंड है। तो ये सब बाबा के हाथ में है, लेना व न लेना। बाबा पैसे क्या करेंगे, शिव बाबा को तो हाँ कोई पैसे कोई जरूरत नहीं है, दरकार ही नहीं है, ये तो तुम बच्चों के लिए मकान बना रहे। कई कहते थे बाबा को, बाबा ये मकान क्यों बनवा रहे हो, ये तो सब खत्म होने वाले हैं। तो बाबा कहते थे मकान भी खत्म होंगे तो धन भी तो खत्म होगा, वो कौन सा रहने वाला है, लेकिन बच्चे तो कम से कम अच्छी तरह रहे, इसीलिए मकान तो बनाने पड़ते हैं। तो ये तो तुम बच्चों के लिए मकान बना रहे हैं, आकर के बाबा से मिलकर ही जाना है, तो बच्चे रहेंगे कहाँ, सदैव तो रहना नहीं है, मिलकर के फिर वापस जाओ, यहाँ रहकर क्या करेंगे, सदैव तो रहना नहीं है, पैसे की क्या दरकार रहेगी, कोई लश्कर व तोप आदि तो नहीं चाहिए ना, वो तो सरकार को तोप चाहिए, हथियार चाहिए, क्योंकि उस पर बहुत पैसा लगता है, तो हमको तो वो सब कुछ भी नहीं चाहिए, तो हमारा धन तो उसमें कभी गया ही नहीं न जाता है, तो कोई लश्कर व तोप आदि तो नहीं चाहिए ना हमें, तुम तो विश्व के मालिक बनते हो, अभी युद्ध के मैदान में हो, तुम और कुछ भी नहीं करते हो सिवाय बाप को याद करने के, कोई हथियार पवार नहीं चलाते हो, बस बाबा को याद करते हो, बाप ने फरमान किया है मुझे याद करो तो इतनी शक्ति मिलेगी, ये तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है, बाप है सर्वशक्तिवान, तुम उनके बनते हो तो सारा मदार याद की यात्रा पर है, यहाँ तुम सुनते हो फिर उस पर मंथन चलता है, बाबा की मूली सुनते हैं फिर दिन भर उन पर मंथन चलता है, जैसे गाय खाना खाकर फिर उगाड़ती है, एक बार खा लेती है आधा चबा लेती है और पेट में रखती है, फिर सारा दिन उसका मुंह चलता ही रहता है, भले वो उस समय खाती नहीं है लेकिन मुंह चलता ही रहता है, क्योंकि जो आधा खाया हुआ है वो फिर निकाल करके फिर पूरा चबा लेती है। तो बाबा कहते हैं जैसे गाय खाना खाकर फिर उगाड़ती है, मुख चलता ही रहता है, तुम बच्चों को भी कहते हैं ये ज्ञान की बातों पर खूब विचार करो, बाबा से हम क्या पूछें, बाप तो कहते हैं मन मना भव, पूछने की दरकार ही नहीं है, जो बताना था वो बता दिया और जो नहीं बताना है वो बाबा कहते हैं वेट एंड सी, आप खुद जाके देखना, और अगर नहीं बताना है तो अंत में तुम सब देख लोगे, अभी बाबा नहीं बताते, नहीं तो जैसे क्लाइमेक्स सीन आती है तो पहले से थोड़ी बताएंगे, भाई थोड़ा आश्चर्य भी तो चाहिए ना क्या होगा, इसीलिए कहते आप देखते रहो। तो कई बातों के लिए बाबा कहते देखते रहो। बाबा से हम क्या पूछें, बाप तो कहते मन मना भव, जिससे ही तुम सतो प्रधान बनते हो, ये एम ऑब्जेक्ट सामने है, तुम जानते हो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है, ये ऑटोमेटिकली अंदर में आना चाहिए, हमको क्या बनना है बाबा कहते ये सदा बुद्धि में आना चाहिए, कोई की ग्लानी व पाप कर्म आदि कुछ भी न हो, न कोई की ग्लानी करो पाप कर्म करो, ग्लानी करना भी बहुत बड़ा पाप है, और निर्दोषी को दोषी बनाना ये तो बहुत बड़ा पाप है ना, कई जजेस आते हैं यहाँ हम लोगों के पास तो कहते हैं हमको कैसे पता चले हमको सजा देनी है, और ऐसे पूरे एविडेंस है कि इसी ने ही हत्या की है, और उसने हत्या नहीं की है तो कैसे हमको सजा तो देनी पड़ेगी, तो बहुत असमंजस में होते हैं क्या करें। तो बाबा कहते हैं तो कोई की ग्लानी व पाप कर्म आदि कुछ भी न हो, कोई भी तुमको उल्टा कर्म नहीं करना है, हाँ देखो बाबा कितना सावधान करते हैं, नंबर वन है ये देवी देवताएं, पुरुषार्थ से ऊंच पद पाया है ना, उनों के लिए गाया जाता है अहिंसा परमो देवी देवता धर्म, किसको मारना ये तो हिंसा हुई ना। बाप समझाते हैं तो फिर बच्चों को अंतर्मुख हो अपने को देखना है हम कैसे बने हैं। बाबा को हम याद करते हैं, कितना समय हम याद करते हैं, इतनी दिल लग जाए बाबा से जो ये याद कभी भूले ही नहीं। अब बेहद का बाप कहते हैं, तुम आत्माएं मेरी संतान हो, सो भी तुम अनादि संतान हो। वो जो आशिक माशिक होते हैं उन्हों की है जिस्मानी याद। जिस्मानी याद कैसे करते हैं, जैसे साक्षात्कार होता है फिर गुम हो जाते हैं। वो जिसके जो जिसका माशुक होगा वो आशिक को उसका चेहरा दिखाई देता है नहीं वहां, लेकिन उसको लगता है जैसे यहाँ ही है और उनसे बातें कर रहा, और फिर वो गायब हो जाता है, जैसे साक्षात्कार हुआ और गायब हो गया। जैसे साक्षात्कार होता है फिर गुम हो जाते हैं, वैसे वो भी सामने आ जाते हैं, वो माशुक सामने आ जाते हैं, उसी खुशी में ही खाते पीते याद करते रहते हैं। तो तुम्हारे इस याद में तो बहुत बल है, एक बाप को ही याद करते रहेंगे और तुमको फिर अपना भविष्य याद आएगा, विनाश का साक्षात्कार भी होगा। अब देखो बाबा कहते विनाश का साक्षात्कार भी होगा, आगे चल जल्दी जल्दी विनाश का साक्षात्कार होगा, माना आंखों के सामने देखेंगे विनाश। वो साक्षात्कार की बात नहीं, बाबा कहते हैं वो साक्षात्कार करने की जरूरत ही नहीं होगी, आप सामने ही देखेंगे आंखों के, तो वही साक्षात्कार हुआ। आगे चल जल्दी जल्दी विनाश का साक्षात्कार होगा, फिर तुम कह सकेंगे कि अभी विनाश होना है। अभी भी लोग कहते हैं ना अभी तो विनाश होना है। बाप को याद करो, बाप ने ये सब कुछ छोड़ दिया ना, बाप ब्रह्मा बाबा ने, कुछ भी पिछाड़ी में याद न आए। अभी तो हम अपनी राजधानी में चले, नई दुनिया में जरूर जाना है, योग बल से सब पापों को भस्म करना है, इसमें ही बड़ी मेहनत करनी है। घड़ी घड़ी बाप को भूल जाते हैं क्योंकि ये बड़ी महीन चीज है। मिसाल जो देते हैं सर्प का भ्रमरी का, ये सब इस समय के हैं। भ्रमरी तो कमाल करती है ना, कीड़े को पंख लगवा देती, जैसे पंख लग जाते हैं तो उनसे तुम्हारी कमाल जास्ती है। वो पतित विकारी और कैसे तुम उनको पंख देते हो, वो फरिश्ता बन जाते हैं, तो उनसे तुम्हारी कमाल जास्ती है। बाबा लिखते हैं ना, ज्ञान की भू भू करते रहो, आखिरी जग पड़ेंगे, जाएंगे कहाँ, तुम्हारे पास ही आते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे, तुम्हारा नामाचार होता जाएगा। अभी तो तुम थोड़े हो ना, नामाचार होता जाएगा, होता जा रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, ज्ञान का खूब विचार सागर मंथन करना है, जो सुना है उसे उगारना है, अंतर्मुख हो जाना है कि बाप से ऐसी दिल लगी हुई है जो वो कभी भूले ही नहीं। ऐसे अंतर्मुखी हो जाओ, जो बाप से ऐसी दिल लगी हुई है जो कभी भूले ही नहीं। दूसरा, कोई भी प्रश्न आदि पूछने में अपना टाइम वेस्ट न कर, याद की यात्रा से स्वयं को पावन बनाना है। अंत समय में एक बाप की याद के सिवाय और कोई भी विचार न आए, ये अभ्यास अभी से करना है। वरदान, दृढ़ संकल्प रूपी व्रत, दृढ़ संकल्प रूपी व्रत द्वारा वृत्तियों का परिवर्तन करने वाले महान आत्मा भव। दृढ़ संकल्प रूपी व्रत द्वारा वृत्तियों का परिवर्तन करने वाले महान आत्मा भव। महान बनने का मुख्य आधार है पवित्रता। इस पवित्रता के व्रत को प्रतिज्ञा के रूप में धारण करना, अर्थात महान आत्मा बनना। कोई भी दृढ़ संकल्प रूपी व्रत वृत्ति को बदल देता है। पवित्रता का व्रत लेना अर्थात अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाना। व्रत रखना अर्थात स्थूल रीति से परहेज करना, मन में पक्का संकल्प लेना है, है ना। जब व्रत का दिन आता है, व्रत है मेरा, तो चाहे कितने भी पकवान आदि रख लो, भाई नहीं मेरा व्रत है आज, आज ये सब नहीं खाएंगे। तो बाबा कहते हैं व्रत रखना अर्थात स्थूल रीति से परहेज करना, मन में पक्का संकल्प लेना। तो पावन बनने का व्रत लिया और हम आत्मा भाई भाई हैं, ये ब्रदरहुड की वृत्ति बनाई। इसी वृत्ति से ब्राह्मण महान आत्मा बन गए। स्लोगन, तो व्यर्थ से बचना है तो मुख पर दृढ़ संकल्प का बटन लगा दो। अब बटन लग गया तो व्यर्थ बोल भी नहीं निकलेंगे और व्यर्थ संकल्प भी नहीं निकलेंगे, मन में आएंगे। आज का व्यक्ति इशारा, आज 21 तारीख है, कंबाइंड सेवा के बिना सफलता असंभव है। मेरे बाबा मेरे साथ है, हाँ ये सोचना। तो बाबा कहते कंबाइंड सेवा के बिना सफलता असंभव है। ऐसा नहीं हो कि जाओ सेवा करने और लौटो तो कहो माया आ गई, मूड ऑफ हो गया, डिस्टर्ब हो गए। इसलिए अंडरलाइन करो, सेवा में सफलता या सेवा में वृद्धि का साधन है स्व और सर्व की कंबाइंड सेवा। स्व और सर्व की कंबाइंड सेवा। ध्यान रहे कोई भी सेवा हमारी स्थिति को डगमग न कर दे। सेवा भले करो पर वो सेवा आपको डगमग न कर दे, आपकी स्थिति को बिगाड़े नहीं, नीचे न ले आए। इसलिए ध्यान रहे कोई भी सेवा हमारी स्थिति को डगमग न कर दे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।